मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 5 जनवरी 2017 है और आज के इस cfeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों में से पहले साथी हैं आदित्य प्रकाश जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और दूसरे साथी हैं सत्य प्रकाश साहू आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो आदित्य और सत्य प्रकाश आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और उसमें शुरुआत करते हैं AIR न्यूज से। मित्रों एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में तो न्यूज में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी हम लोग आज विस्तार से चर्चा कर सकें, लेकिन कुछ पॉइंट्स जरूर ऐसे हैं जिन पर मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा और हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आप लोगों को पहले से भी मालूम हूं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो मुझे स्टूडेंट से बातचीत के दौरान पता लगता है कि आप लोगों को कुछ चीजें रिपीटेशन जैसी भी लगती होंगी, है ना, कि ये चीज तो सर पहले भी बता चुके हैं। मित्रों अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल सही लगता है, आपको कहीं भी गलत नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको उसके रीजन बताता हूं और आप लोगों के लिए उसकी उपयोगिता भी बताता हूं। मैं देखिए अगर किसी बात को रिपीट कर रहा हूं तो आप मान करके चलिए कि वो बात कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको जानना ही चाहिए। तो रिपीट करने का मतलब यही होता है कि वो आपको और ज्यादा जानना चाहिए, गहराई से जानना चाहिए। दूसरी बात की मेरा पर्पज ये भी होता है कि मैं उसे रिफ्रेश करूं, आपके दिमाग में ताजगी लेकर के उसके बारे में आऊं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये मत समझिए कि अगर मैंने कोई बात 6 महीने पहले आपको बताई है तो वो ज्यों की त्यों आपके दिमाग में होगी। आप आभास तो उसका आपके दिमाग में है कि हां सर ने ऐसा कुछ बताया था और इस टॉपिक पर बात भी हुई है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मौजूद रहेगी जिस तरीके से उस समय बात हुई थी। पहली बात, दूसरी उसमें अब नया कुछ जुड़ गया है, थोड़ा सा नया जुड़ गया है। अब आप उस थोड़े से नए को अगर पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, अब वो बात अलग है। तो एक तो वो जो टॉपिक महत्वपूर्ण होगा इसलिए मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, दूसरा यह है कि आपके दिमाग में उस ताजगी से फिर से वो टॉपिक बैठ जाए इसलिए रिपीट कर रहा हूं, तीसरा कुछ उसमें जो नयापन है वो आपकी पकड़ में आ जाए इसलिए भी मैं ये बात रख रहा हूं, और चौथी तो ये होती ही है बात है दोस्तों, ये रीजन होता है क्योंकि इस डेली ऑडियो से चूंकि लगातार नए नए लिसनर जो श्रोता हैं वो जुड़ते रहते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि चूंकि अभी अभी नए जुड़े हैं तो इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा, तो उनको भी ध्यान में रख करके मुझे कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मित्रों अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये विचार भी कर रहे हो तो आप इसको इस रूप में न लें कि आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, बेकार की बातें की जा रही है, या कि मेरे पास बातें करने के लिए और कुछ नहीं है। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत होती है, मतलब सच पूछिए तो डेली ऑडियो में अगर मुझे इस डेली ऑडियो आपका लगभग लगभग 20 मिनट का न्यूज एनालिसिस वाला पार्ट होता है ना, देखा होगा आपने 20 22 24 मिनट का डिपेंड करता है इसका होता है, अगर इसे मैं डबल भी कर दूं ना 45 मिनट का तो उतनी बात करने के लिए रोजाना होता है मसाला, मतलब आपकी 15 मिनट की खबरें और फिर अखबारों के इतने सारे क्लिपिंग्स, मेरे पास बात करने की कमी नहीं होती है। मुझे तो बल्कि संकट इसका सामना करना पड़ता है कि मैं इसमें से कौन सा रखूं और किसको छोड़ूं, तो बट नेचुरल है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वह मैं रखता हूं और बाकी इशारा करके सांकेतिक रूप में आपको बताकर वो बातें आपके ऊपर छोड़ देता हूं, और सच बात है कि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो छोड़ा जाना ही चाहिए। तो मित्रों चूंकि मुझे कुछ मेल पिछले कुछ समय से ऐसे मिल रहे थे और तो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे अपना स्पष्टीकरण आप लोगों को देना चाहिए। दोस्तों जो पहली जो खबर थी जो काफी बड़ी खबर थी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर भी थी कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जो फरवरी से लेकर के मार्च तक चलेंगे और 11 मार्च को रिजल्ट आएगा। हमारे सिविल सर्विस की दृष्टि से किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीट हैं और क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उस न्यूज में जो कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, खासकर उधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, उनको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से भी और इनफैक्ट पॉलिटी की दृष्टि से भी। उसमें आपने एक शब्द सुना दोस्तों, पेड न्यूज। पेड न्यूज, हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि हम पेड न्यूज पर इस बार शुरू से नजर रखेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग पेड न्यूज के बारे में जानते होंगे, कभी कभी इस पर पूछ भी लिया जाता है, और अगर मीडिया के करेक्टर पर पूछा जाता है तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि ये पेड न्यूज क्या होता है। इसका अर्थ इसके शब्द में ही निहित है दोस्तों, कि वह न्यूज जो पैसा देकर छपवाई जाती हो, पेड न्यूज। देखिए, न्यूज तो ऐसे ही है कि अब जैसे मान लीजिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय न्यूज है, तो ये न्यूज तो छपनी ही छपनी है। लेकिन मान लीजिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं एक कैंडिडेट के रूप में, दूसरे भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अब मैं चाहता हूं यार कि मेरे बारे में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो अखबार हैं ज्यादा अच्छा अच्छा छापें, खूब भीड़ आ रही है और खूब लोग वेलकम कर रहे हैं और जीतने की पूरी संभावना है और बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी खबरें छपें और खूब छपें, फ्रंट पेज पर छपे, इंपॉर्टेंट जगहों पर छपे, लंबी खबरें छपे, और दूसरे कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट ये चाह रहे हैं, तब अखबार क्या करेगा? अखबारों की कोशिश होती है कि वो बैलेंस बनाकर चले। तो मित्रों, ये जो पेड न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है 1980 के बाद से धीरे 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 शुरू हुआ। तो अब क्या होता है कि ये माना जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या जो कैंडिडेट ही हो, वो क्या है कि अखबार से बात कर लेता है, चाहे अखबार के मालिक से बात कर ले, अखबार के एडिटर से बात कर ले, अखबार के संवाददाता से बात कर ले, लोकल एजेंट से, जिससे भी बात कर ले, जो भी जिससे भी उसकी पटरी बैठ रही है या जो भी मैकेनिज्म हो, तो उसमें यह है कि भैया तुम ऐसा करो कि तुमको हम इतना पैसा देंगे और तुम हमारे बारे में इतने न्यूज छापोगे, बस पेड न्यूज हो गया, खरीद लिया आपने न्यूज। अब लोग उसको पढ़ रहे हैं और उस कैंडिडेट की एक अच्छी इमेज बन रही है और अच्छी इमेज बनने का स्वाभाविक रूप से प्रभाव जो मतदान पर पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है दोस्तों पेड न्यूज। ये आदर्श आचार संहिता के अगेंस्ट है, पेड न्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द आपने चुनावी खर्च की सीमा के बारे में सुना, ये मुझे इस बारे में अच्छा लगा कि इस बार चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख कर दी गई, जो बड़े जैसे उत्तर प्रदेश पंजाब में 28 लाख रुपए कर दी गई, पहले शायद 25 लाख रुपए थी। तो अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, 5 साल पहले 25 लाख रुपए थी, तो अब 5 साल के बाद उसमें 3 लाख रुपए का इजाफा किया गया, तो कम से कम ये प्रैक्टिकल तो है कि भाई बढ़ोतरी उसमें की गई है। तो एक उम्मीदवार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र के लिए ज्यादा है, 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इसमें पेच क्या है मित्रों, उसको आप समझ लीजिए, मैं उधर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। यह बाद में आकर के हुआ, शुरू में नहीं था, शुरू में तो अंधाधुंध पैसा खर्च करते थे लोग, और जब बाद में यह आवाज उठने लगी कि चुनावी दंगल तो पूरी तरह से पैसों पर आधारित हो गया है, तब चुनाव आयोग ने धनराशि की सीमा निर्धारित की कि इतना तक पैसा खर्च किया जा सकता है, लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग, छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग, तो वो अलग अलग उसके निर्धारण है। यहां जो इसमें जो लूप होल है दोस्तों, वो ये है, ये जो 28 लाख रुपए जो खर्च होने हैं, ये उम्मीदवार के खाते से होने हैं, ये टोटल खर्च नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा लूप होल है। जैसे मान लीजिए कि मेरा सपोर्टर है, मैं कहीं से खड़ा हो रहा हूं और मेरा कोई सपोर्टर है, तो सपोर्टर अगर अपनी तरफ से मेरे चुनाव में खर्च कर रहा है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मान लीजिए जिस राजनीतिक दल की तरफ से खड़ा हूं, वो राजनीतिक दल अगर कुछ खर्च कर रही है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक दल ने गाड़ियां भिजवा दी, राजनीतिक दल ने पोस्टर्स भिजवा दिए और कुछ कर दिए, तो वो मेरे अकाउंट में शामिल नहीं होगा। तो ये जो खर्च की जो सीमा है, ये टोटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इसका आप यू कह लीजिए कि लूप होल है। तब यही होता कि भले ही वो कैंडिडेट ही खर्च करे, उसके नाम से डाल दिया, उसके नाम से डाल दिया, उसके नाम से डाल दिया। तो इसीलिए अब ये मतलब जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं वो तो ये अनुमान लगाती हैं कि एक संसदीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट का मुझे मालूम है कि एक पार्लियामेंट में तो जो खर्च होता है लगभग लगभग औसतन 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होता है, हो जाते हैं चुनाव में, जबकि निर्धारण शायद 40 लाख रुपए के आसपास का ही है। तो ये लूप होल इस चुनावी खर्च में है। तीसरा, ये मित्रों जो प्रशासन होता है, आपने देखा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो चुनाव से जुड़ा हुआ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। मतलब उसके लिए ये नहीं होता कि उसमें कुछ बड़ा, जैसे कलेक्टर है तो वो डिस्ट्रिक्ट में चुनाव अधिकारी बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से फटाफट सारा का सारा सिस्टम काम करने लगता है और आदर्श आचार संहिता तो लागू हो ही जाती है। अब वो आदर्श आचार संहिता क्या होती है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अब जब चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि वहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वहां उल्लंघन हो रहा है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने को सुनने को मिलेंगी, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये चुनाव को लेकर के कुछ बातें आपसे मुझे शेयर करनी थी। मित्रों, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है जीएसटी काउंसिल को लेकर के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस काउंसिल। मैं अपने स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारा जीएसटी काउंसिल है ये कितना संघात्मक है। बेसिकली ये फेडरलिज्म के पैटर्न पर होना चाहिए और इसको फिजिकल फेडरलिज्म का मापदंड माना जाता है। एक जो वित्तीय संघात्मक व्यवस्था है उसका एक प्रतिमान जीएसटी काउंसिल को माना जाता है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने इस पर आप लोगों को एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया है और उसमें बताने की कोशिश की है कि ये कितना फेडरल है, कितना फेडरल नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग एक बार जरूर बीच बीच में सुन लिया कीजिए। यहां मैं अपने बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके लिए बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो जीएसटी काउंसिल है ये बेसिकली अब टैक्सेस के बारे में फैसला करेगी। पहले आपको मालूम है कि राज्य सरकार अपने टैक्सेस के बारे में फैसला करती थी कितना लगाना है, केंद्र सरकार अपने टैक्सेस के बारे में फैसला करती थी। अब ये काउंसिल बना दिया गया है जीएसटी लागू करने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल है जिसके चेयरमैन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे वो होते हैं, और जितने भी स्टेट के जो वित्त मंत्री होते हैं वो सब के सब इसके मेंबर होते हैं, राइट। इससे ये जीएसटी काउंसिल बनती है और ये सभी बातों का फैसला करेगी, टैक्सेस के बारे में ये फैसला लेती है। क्योंकि अभी आप लगातार देख रहे हैं ना कि इसमें फैसला नहीं हुआ, इसमें फैसला नहीं हुआ, इस पर अड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये फैसले क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसके मेंबर हो गए, तो आप मोटे तौर पर 30 स्टेट मान लीजिए, चलिए 30 स्टेट्स मान लीजिए मोटे तौर पर, और आप एक केंद्र को मान लीजिए। केंद्र में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है तो एक ही, वो तो केंद्र के ही है, दोनों मेंबर है। अब देखिए मित्रों, तो इसका सिस्टम ये बनाया गया है कि जो भी फैसला होगा वो 75% के बहुमत से होगा। 75% बहुमत होना चाहिए, आदेश में नहीं कि आधे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, 75%। लेकिन ये 75% का कैलकुलेशन क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो 33% जो वोटिंग राइट्स हैं, मतलब 1/3 कह लीजिए, 1/3 वोट सिर्फ सेंटर के पास है। मतलब सेंटर एक है लेकिन उसकी जो वेटेज है वो 33.3% का, 1/3, और रिमेनिंग जो 66.7% जो है वो सभी राज्यों के पास है, सभी राज्यों के पास। यानी कि मोटे तौर पर एक राज्य के वोट की कीमत 2.23 या 2.2 मान लीजिए, 2.2 है बस। अब किसी भी इश्यू को पारित होने के लिए 75% वोट चाहिए। अब आप बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत इसका मैथमेटिक्स है। यानी कि सामान्य मैथमेटिक्स मैं आपको चलिए बता देता हूं, आप को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि केंद्र किसी के बारे में सहमत है कि ये होना चाहिए, तो 33% वोट तो उसको मिल गए। अब उसको 42 और चाहिए, 42% वोट और चाहिए, 33 तो उसके पास हो गए, और 75 में अब 33 घटा दीजिए तो बच गए 42। अब 42 के लिए एक राज्य का कितना वोट परसेंट है, 2.2, तो मान लीजिए कि उसे 20 राज्यों का भी समर्थन चाहिए। जब 20 राज्य सपोर्ट करें और केंद्र सपोर्ट करें तभी कोई प्रस्ताव पारित हो पाएगा, अदरवाइज पारित नहीं हो पाएगा। और यहां तक कि अगर पूरे के पूरे राज्य इकट्ठे हो जाएं कि हम तो इसको पारित करा करके रहेंगे और केंद्र सपोर्ट न करे तो भी वह पारित नहीं होगा, क्योंकि पूरे राज्य अगर मिल भी जाए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, तब भी इनके पास परसेंटेज कितना होगा, 67% और चाहिए 75%। तो मित्रों ये इसका पूरा गणित है, इसीलिए जीएसटी काउंसिल से कोई भी प्रस्ताव पारित होना उतना आसान नहीं है, लेकिन है ये फेडरल इसका अपना एक अलग अर्थ है, इस तरह की जो व्यवस्था की गई है उसके पीछे अपना एक अलग पर्पज है ना, तो वो क्या है वो तो एक अलग मुद्दा है। तो मुझे लगा कि जीएसटी काउंसिल के बारे में मैं आपको ये बातें बता दूं, क्योंकि अब तो खूब मीटिंग होंगी ना, 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करने की बात है, कभी ये कहा जा रहा है कि हो जाएगा 1 अप्रैल से लागू, कभी कहा जा रहा है कि नहीं होगा। तो अगर सच में लागू करने की बात हुई तो इनकी खूब मीटिंग्स होंगी, जल्दी जल्दी मीटिंग्स होंगी, तो आपको एटलीस्ट मैकेनिज्म तो मालूम होना चाहिए कि मतलब कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों ये जीएसटी काउंसिल के बारे में थी न्यूज, AIR न्यूज से बस इतनी ही बातें हैं। दोस्तों जहां तक आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, अफसोस कि मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है, 2 क्लिपिंग्स बहुत ही शानदार क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और प्लीज इन दोनों क्लिपिंग्स के साथ आप थोड़ा लंबा वक्त गुजारिएगा। 1 क्लिपिंग्स डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का है, खासकर नोटबंदी के बाद अब सरकार को किस तरह की नीति अपनानी चाहिए इसको लेकर के लिखा है, और आप लोग अब भरत झुनझुनवाला जिसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में चीजें लिखते हैं, बड़े समझाने के अंदाज में अपनी बात कहते हैं, तो सच पूछे तो उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में इसको समझाया है कि फिर मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं, और शायद मैं सच पूछे तो कोशिश करने के बाद भी उतने खूबसूरत अंदाज से समझा भी नहीं पाऊंगा, तो ऑलरेडी समझा समझाया है ये, तो आप लोग इसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारिएगा प्लीज, और समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की नहीं। दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों वो बिजनेस स्टैंडर्ड का है, करों से राजस्व की प्राप्ति कम क्यों है इतनी, नीलकंठ मिश्र जी का लेख है ये भी बहुत खूबसूरत लेख है। इसमें जो सबसे अच्छी 2-3 सबसे अच्छी बातें जो कही है वो है कि रूरल एरियाज की जो ग्रामीण जीडीपी है, उस ग्रामीण जीडीपी में अब कृषि की जो हिस्सेदारी है वो घटकर 1/3 रह गई है, बाकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी गैर कृषि कार्यों की हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुझे पहली बार ये फैक्ट पता लगा और मैं चौंक गया बिल्कुल, कह रहे कि मतलब ये नहीं कि गांव के लोगों की, जैसे हम एग्रीकल्चर का कितना टोटल जीडीपी में आप देखते हैं 15% के आसपास, 14-15%, लेकिन जो गांव की जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का केवल 1/3 है। मैं तो ये जान रहा था कि गांव की जो जीडीपी होगी उसमें एग्रीकल्चर का एटलीस्ट 60% तो होगा ही, लेकिन 1/3 है, और रिमेनिंग जो 2/3 है वो दूसरे गैर कृषि कार्यों से है। तो यहां उन्होंने टैक्सेस के बारे में जो बड़ी अच्छी बात कही है कि खेती पर टैक्स नहीं लगता, खेती की आय पर कोई आयकर नहीं लगता, लेकिन ये खेती करने वाले लोग जो दूसरे तरीके से जो आय कर रहे हैं वो भी खेती की आड़ में उस पर आयकर नहीं दे रहे हैं, जबकि बड़ा हिस्सा उस आय का है। तो बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने 2-3 इसमें बताई हैं, और मैं चाहूंगा कि इन दोनों तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कन्विंसिंग पॉइंट है। और दोस्तों इसके बाद भी कुछ और आर्टिकल्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज आप सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सौम्या झा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, अंकुश कुमार, गोविंद कुमार गौतम, रोहित सिंह उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, अमित कुमार, नवजोत शर्मा सुनाम पंजाब से हैं, मोहिनी रावत लखनऊ से, काजल भारती पटना से, राघवेंद्र प्रताप सिंह और सचिन सिंह, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, अब आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।